लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम सब लोग सृष्टि की रक्षा के प्रति समर्पित युवाओं में आनंदित होते हुए सरल और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय जीवन शैली हेतु सही विकल्पों को चुनने का साहस प्राप्त करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवार ये आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस द्वारा बुदापेस्ट और स्लोवाकिया की यात्रा पर दिया गया संक्षिप्त विवरण, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आमदर्शन समारोह के अवसर पर वेटिकन के पॉल षष्ठम सभागार में उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन करते हुए कहा,
फ्रेटेली ए सोरेले बोंजोर्नो। ओजी वोरेई पार्लारवी देल व्याजो अपोस्टोलिको के हो कंप्यूटो अ बुदापेस्ट ए इन स्लोवाकिया।
भाइयों एवं बहनों सुप्रभात, आज मैं आप सबों से अपनी प्रेरितिक यात्रा के बारे में बताना चाहूंगा, जिसको मैंने बुदापेस्ट और स्लोवाकिया में पूरा किया। यह एक प्रार्थना की तीर्थ यात्रा थी, एक मूल की तीर्थ यात्रा, एक आशा की तीर्थ यात्रा। इसका पहला चरण बुदापेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय यूखारिस्तीय कांग्रेस का समापन मिस्सा था। इस समारोह में सहभागी होना बहुत अच्छा रहा। ईश्वर की पवित्र प्रजा प्रभु के दिन यूखारिस्त के सामने एकत्रित हुए, जहां वे लगातार श्रेष्ठ और नामीकृत होते हैं। वे क्रूस के द्वारा आलिंगन किए गए, जो वेदी के ऊपर स्थापित था और यूखारिस्त द्वारा इंगित एक ही दिशा दिखा रहा था, अर्थात विनम्र और निस्वार्थ प्रेम का रास्ता, सभी के प्रति उदार और सम्मानपूर्ण प्रेम विश्वास, जो दुनियादारी से शुद्ध करता एवं अनिवार्यता की ओर ले चलता है। प्रार्थना की तीर्थ यात्रा का समापन स्लोवाकिया में दुखों की माता मरियम के पर्व के साथ हुआ, जो एक राष्ट्रीय धार्मिक उत्सव भी है। इस तरह यूरोप के हृदय में यह मेरी प्रार्थना की तीर्थ यात्रा थी, जो आराधना से शुरू होकर लोकप्रिय भक्ति में समाप्त हुई।
Perché a questo è chiamato innanzitutto il popolo di Dio, adorare, pregare, camminare, peregrinare, fare penitenza. In tutto questo sentire la pace e la gioia che ci dà il Signore.
Ish praja prarthana hetu bulai jati hai. Aradhana prarthana chalne, vismay aur prashit karne evam iske dwara shanti aur anand ko mehsoos karne ke liye jisko prabhu hame pradan karte hain. यूरोपीय महाद्वीप में इसका खास महत्व है, जहां ईश्वर की उपस्थिति को उपभोक्तावाद एवं एक विचार के वाष्प से गौण किया जाता है। एक अजीब किंतु सच्ची बात पुरानी और नई विचारधारा के मिश्रण का फल है। यह हमें प्रभु और ईश्वर के साथ संबंध से दूर करता है। इस पृष्ठभूमि में भी चंगाई का प्रत्युत्तर प्रार्थना, साक्ष्य और विनम्र प्रेम से आता है। संत पापा ने कहा, ईश्वर की पवित्र प्रजा से मुलाकात करते हुए मैंने यही देखा कि एक निष्ठावान प्रजा जिसने नास्तिकों से अत्याचार सहा, मैंने उसे हमारे यहूदी भाई बहनों के चेहरे में भी देखा, जिनके साथ हमने शोवा की याद की, क्योंकि स्मृति के बिना प्रार्थना नहीं होती है। इसका अर्थ क्या है? जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने जीवन की, दूसरों के जीवन की और बहुत सारे लोगों के जीवन की याद करते हैं। संत पापा ने कहा, प्रार्थना एक व्यक्ति के जीवन की याद है, दूसरे लोगों के जीवन की, इतिहास की याद है। याद रखें, यह अच्छा है और प्रार्थना करने में हमारी मदद करता है।
Questo viaggio è stato un pellegrinaggio alle radici.
इस प्रेरितिक यात्रा का दूसरा पहलू तीर्थ यात्रा के रूप में जड़ों तक जाना था। बुदापेस्ट और ब्रातिस्लावा में अपने धर्माध्यक्ष गणों से मिलन ने मुझे प्रत्यक्ष रूप में विश्वास की कृतज्ञतापूर्ण स्मृति और ख्रिस्तीय जीवन से मेल कराया, जिसकी झलक मुझे कार्डिनलों के द्वारा देखने को मिली। विश्वास की जड़ें 19वीं शताब्दी की ओर जाती हैं, जहां हम संत सिरिल और संत मेथोडियस द्वारा निरंतर सुसमाचार प्रचार के कार्यों को देखते हैं। विश्वास की मजबूत जड़ों का अनुभव मैंने बैजेंटाइन रीति की धर्म विधि में सहभागिता के दौरान पेशोव में पवित्र क्रूस के पर्व दिवस में की। धर्म विधि के गीतों में मैंने विश्वासियों के हृदय को झनकृत होते हुए अनुभव किया, जो विश्वास के कारण असंख्य दुखों से तपा हुआ था। कई अवसरों पर मैंने विश्वास के इन जीवित जड़ों को मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया, जो पवित्र आत्मा से पोषित किया जाता है, जिसे अपने में बनाए रखने की जरूरत है। संत सिरिल और संत मेथोडियस हमारे लिए स्मृति चिन्ह नहीं अपितु अनुकरणीय आदर्श हैं। उनके द्वारा विश्वास की जड़ों को समझना और जीना भविष्य में उनके द्वारा आशा की शाखाओं को विकसित होने और बढ़ने का एक आश्वासन देता है। संत पापा ने कहा,
Ognuno di noi ha le proprie radici. Ricordiamo le proprie radici dei padri, dei nonni.
कि हमारी भी अपनी अपनी जड़ें हैं। क्या हम अपनी जड़ों को याद करते हैं? क्या हम अपने माता पिता दादा दादियों की याद करते हैं? क्या हम अपने दादा दादियों से संयुक्त हैं, जो हमारे लिए प्रेम के स्रोत हैं? संत पापा ने दादा दादियों से जुड़े रहने की बात को जोर देते हुए कहा कि आप इस सुंदर कथन को याद रखें, पौधों का विकास उनकी जड़ों पर निर्भर करता है। हम उतना ही विकसित होंगे जितना हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए शक्ति वहीं से आती है। वहीं यदि हम जड़ों को काट देते, सभी चीजें नई नए आदर्श होते, तो यह हमें कहीं का नहीं रख छोड़ता है। यह हमें विकसित नहीं करता, हमारा अंत बुरा होता है। संत पापा ने अपनी यात्रा के तीसरे पहलू की चर्चा करते हुए कहा कि यह आशा का एक तीर्थ था। कोशेक के खेल मैदान में युवाओं के संग अपनी अविस्मरणीय मुलाकात में मैंने उनकी आंखों में वृहद आशा को देखा। दंपतियों को उनके बच्चों के संग देख संत पापा ने उन्हें भविष्य में आशा की निशानी कहा। उन्होंने धन्य अन्ना कोलेसारोव, एक स्लोवाक की लड़की के ठोस और प्रेरितिक साक्ष्य का जिक्र किया, जिन्होंने हिंसा के मध्य अपने सम्मान की रक्षा की। यह साक्ष्य आज भी पहले की अपेक्षा अपनी महत्वपूर्णता को व्यक्त करता है, जहां नारियों के प्रति सभी समाज में हिंसा एक घाव के रूप में व्याप्त है। संत पापा ने लोगों में व्याप्त उस आशा का जिक्र किया, जहां वे शांतिमय तरीके से एक दूसरे के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए चिंता के भाव व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने ब्रातिस्लावा में मिशनरी ऑफ चैरिटी धर्म समाज की धर्म बहनों की याद की, जो आश्रयहीन लोगों को आश्रय प्रदान करती हैं। उन्होंने उन्हें नेक धर्म बहनों की संज्ञा देते हुए कहा कि वे समाज के परित्यक्त लोगों को ग्रहण करती हैं।
E pregano tanto e aiutano tanto, senza pretese.
वे अधिक प्रार्थना करती और बिना दिखावा किए अधिक सेवा भी करती हैं। वे इस सभ्यता की नायिकाएं हैं। संत पापा ने कहा कि इस आशा को मैंने अपने इस प्रेरितिक यात्रा के दौरान ठोस कार्यों में अभिव्यक्त होते हुए देखा। जो शब्द एक साथ में व्यक्त होता है, आशा कभी निराश नहीं करती, वहीं आशा कभी अकेले नहीं जाती, यह मिलकर चलती है। बुदापेस्ट और स्लोवाकिया में हम विभिन्न ख्रिस्तीय रीतियों के संग एक हुए। हमारा मिलन विभिन्न ख्रिस्तीय समुदायों से हुआ। हम यहूदी भाई बहनों के रूप में एक हुए। विश्वासियों और दूसरे धर्मों के रूप में हमने अपने को एक पाया। हमने कमजोरों के साथ अपने को एक किया।
Perché il futuro sarà di speranza se sarà insieme.
यही हमारे लिए एक मार्ग है, क्योंकि यदि हम एक होते हैं तो आशा में हमारे भविष्य को बनाए रखते हैं। संत पापा ने कहा कि इस यात्रा के उपरांत मैं अपने हृदय में एक वृहद कृतज्ञता के भाव को पाता हूँ। उन्होंने हंगरी और स्लोवाकिया के राष्ट्रपतियों, धर्माध्यक्षों, नागर अधिकारियों और सभी सहकारी संगठनों के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव प्रकट किए। संत पापा ने इस यात्रा में बोए गए बीज के विकास हेतु प्रार्थना करने का आग्रह करते हुए सबों के संग मिलकर हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ किया और अंत में सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Domino Hoviscum.
Et con spirito tuo.
Sin nome Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in seculo.
Et genu nostrum in nomine Domini.
Qui fecit celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Amen.
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन के संत पॉल छठे सभागार में बुधवार आम दर्शन के दौरान अपने दर्शकों के साथ हाल में बुद्धापेस्ट और स्लोवाकिया की चार दिवसीय प्रेरितिक यात्रा में बुद्धापेस्ट और स्लोवाकिया के लोगों से हुई मुलाकात, उन्हें दिए अपने संदेशों और अपने अनुभवों को साझा किया। इसी के मद्देनजर संत पापा फ्रांसिस ने ट्वीट संदेश में लिखा, आइए हम एक साथ प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से कृपा मांगे कि बुद्धापेस्ट और स्लोवाकिया की प्रेरितिक यात्रा के दौरान बोए गए बीज ईश्वर के लोगों में अच्छे फल ला सकें। उधर अंतर्राष्ट्रीय कारितास द्वारा आयोजित एक वेबिनार में कैरिबियन देश हैती की गंभीर स्थिति पर चित्रण किया गया, जहां कैथोलिक समुदाय स्थानीय उदार संगठन के माध्यम से पिछले 14 अगस्त के भूकंप से पीड़ित आबादी की मदद करने में शामिल है। हैती में आए भूकंप में 2,200 से भी अधिक लोगों की मौत हुए एक महीने से अधिक समय बीत चुका है। भूकंप केवल नवीनतम घाव है। हैती की आबादी 11 मिलियन से अधिक है। 25% प्रतिदिन $2 से भी कम पर जीवन यापन करते हैं। आधी से अधिक आबादी गंभीर कुपोषण का शिकार है। शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है। प्रत्येक 1,000 में 72 बच्चे जीवन के 5वें वर्ष से पहले मर जाते हैं। हैती की अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता और तेजी से बढ़ती हिंसा के कारण मंद थी, पिछले 14 अगस्त के भूकंप के कारण और मंदी का सामना कर रही है। इस नाटकीय परिदृश्य में, जहां पहले जुलाई में राष्ट्रपति जोवेनेल मोसे की हत्या कर दी गई थी, कलीसिया परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। वेबिनार में लेस केयर के धर्माध्यक्ष कार्डिनल सिबली ने कहा कि हैती देश गरीबी, हिंसा और तबाही से हिल गया है। आबादी के साथ कलीसिया भी पीड़ा सहती है और लोगों की मदद करने में और आराम लाने की कोशिश में सबसे आगे है, परंतु कलीसिया भी पीड़ित है। पुरोहितों, धर्म संघियों और लोक धर्मियों को अपहरण कर लिया जाता है। कार्डिनल ने तब सभी कारितास और भली इच्छा वाले पुरुषों और महिलाओं से अपील की कि वे आबादी को इस भयावह स्थिति से बाहर निकालने में मदद करें।
उधर पोलैंड के वर्षाओ में एक सुरक्षा सम्मेलन में विचार विमर्श के तीसरे दिन मध्य और पूर्वी यूरोप की कलीसिया के नेताओं ने जांच की कि याजकीय यौन शोषण के कारण होने वाली पीड़ा यौन पीड़ित लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। चार दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने वालों ने मंगलवार को अपना काम जारी रखा। वे बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर रहे थे कि याजकों द्वारा यौन शोषण से बचे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है और कलीसिया अपने सबसे कमजोर सदस्यों की रक्षा करने हेतु आगे कौन सा कदम बढ़ाएगी। पोलैंड की राजधानी वर्सोवा में इस सम्मेलन का आयोजन 19 सितंबर से 22 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें मध्य और पूर्वी यूरोप के 20 देशों से लगभग 80 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मंगलवार की सुबह सत्र के मुख्य वक्ता फादर ग्रेस गॉज थे। वे पोलैंड के संत जोसेफ फाउंडेशन के सदस्य और धर्मशास्त्र सिद्धांत के प्रोफेसर हैं। उनका भाषण नाबालिगों के यौन शोषण के परिणामों में धार्मिक आयाम पर केंद्रित था। फादर ग्रेस गॉर्ज ने स्वीकार किया कि दुर्व्यवहार के मामलों में कलीसिया की प्रतिक्रिया कानूनी, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू पर केंद्रित है, जबकि धर्मशास्त्रीय चिंतन पृष्ठभूमि में ढकेल दिया जाता है। हालांकि उन्होंने कहा, धर्मशास्त्र को याजकीय यौन शोषण के संकट को पूरी तरह से समझने के लिए चर्चा में प्रवेश करना चाहिए। फादर ग्रेस गॉर्ज ने कहा कि विश्वास का कार्य इसके प्रसार के साथ उन लोगों द्वारा अनुभव किए गए आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर सीधा प्रभाव डालता है जिन्हें चोट लगी है। उन्होंने कहा, चूंकि विश्वास इसकी मध्यस्थता करती है, गवाह की विश्वसनीयता को इस संकट में घसीटा जाता है और घोटाले से अविश्वास पैदा होता है। पुरोहितों द्वारा दुर्व्यवहार को छिपाने वाले धर्माध्यक्षों ने केवल दुर्व्यवहार से बचे लोगों के दर्द को बढ़ाने और कलीसिया की विश्वसनीयता को कमजोर करने का काम किया है। फादर ग्रेस गॉज ने अपने भाषण को एक अनुस्मारक के साथ समाप्त किया कि कलीसिया अपने स्वभाव से एक समुदाय है जो हृदय परिवर्तन के मार्ग पर यात्रा कर रही है। उस पथ का एक अनिवार्य तत्व कलीसिया के याजकों और संरचनाओं में एक प्रामाणिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाली उचित पश्चाताप धर्म विधि है। जब हम दुर्व्यवहार से जीवित बचे लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं, जब हमारे पास न्याय की चुस्त प्रतिक्रियाएं नहीं होती हैं, तो लोग वास्तव में आघात करते हैं और लोग इस वजह से मर रहे हैं। उक्त बात नाबालिगों के संरक्षण के लिए परम धर्मपीठ आयोग PCPM के एक सदस्य जुआन कार्लोस क्रूज ने वाटिकन न्यूज के साथ साक्षात्कार में कहा। श्री क्रूज चिली के नाबालिगों के याजकीय शोषण के एक पीड़ित हैं, जो स्वर्गीय फर्नांडो कारादिमा के हाथों पीड़ित थे। संत पापा फ्रांसिस ने इस साल मार्च में श्री क्रूज को PCPM के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। इस नई भूमिका में उनके पहले कार्यों में से एक वर्सोवा में सुरक्षा सम्मेलन के हिस्से के रूप में मध्य और पूर्वी यूरोप में कलीसिया के प्रतिनिधियों के लिए एक दुर्व्यवहार पीड़ित के दृष्टिकोण को लाना है। उधर जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड में पहला लौदातो सी उद्यान 21 मई को फहर मठ में खोला गया, जो एक नव शिष्या जूडिथ सैमसन की कल्पना को साकार कर रहा है। आगंतुक अब न केवल जड़ी बूटियों और फूलों से भरी सुंदर उद्यान का आनंद ले सकते हैं, बल्कि संत पापा फ्रांसिस के विश्व पत्र लौदातो सी के बारे में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जूडिथ सैमसन एक बेनेडिक्टन नवशिष्या और एक लौदातो सी अनुप्राण दाता हैं। वाटिकन रेडियो से बातें करते हुए उन्होंने बताया, महामारी के कारण क्वारंटाइन में रहना पड़ा। यह ठीक वही समय था जब उसके मन में मठ के उद्यान को लौदातो सी उद्यान में बदलने का विचार आया। अब यह सुंदर उद्यान जनता के लिए निशुल्क खुला हुआ है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।